क्या ये लड़का मास्टर से ऐसे बात कर रहा है? इसकी इतनी हिम्मत? एक तो मास्टर ने उसकी मदद की और ये उन्हें ही ठग कह रहा है, कितना घमंडी है। विपिन की बात सुनकर भीड़ भौंचक्की रह गई और फिर सभी एक साथ चिल्लाने लगे। इस लड़के का दिमाग खराब तो नहीं था? मास्टर ने एनर्जी और ताकत लगाकर इतना बड़ा खजाना चुनकर दिया और ये उन्हें ही धोखेबाज और ढोंगी कह रहा था। क्या कहा तुमने? मास्टर को लगा नहीं था कि विपिन उनसे इस लहजे में बात करेगा। दोस्त, क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं होगी? गलतफहमी? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी और को धोखा देना है तो जाओ दो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे किसी काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। मैं इधर अपनी चीजें खुद चुन लूंगा और तुम उधर जाकर लोगों को बेवकूफ बनाओ। हम एक दूसरे के रास्ते से दूर रहेंगे, इसलिए अब तुम अपने चेहरे से ये एक्सपर्ट का नकाब उतार दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, विपिन ने हाथ हिलाते हुए कहा और चिढ़कर उसे जाने के लिए कहा। उसे वैसे भी ठगने वालों लोगों से ज्यादा हमदर्दी नहीं थी, फिर भी जब तक वे उसे परेशान नहीं करते थे तब तक वो भी उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन ये इंसान अगर उसके पीछे पड़ गया तो आज इसकी इज्जत मिट्टी में मिलनी निश्चित ही थी। क्या घमंड है? मास्टर के चेहरे पर गुस्सा उभर आया और उन्होंने अपनी बाजू से कपड़े पीछे करते हुए कहा, मैं 30 साल से कैलकुलेशन फील्ड कर रहा हूँ। मैंने अनगिनत लोगों की मदद की है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आज तक एक भी इंसान ने मुझ पर धोखे का आरोप नहीं लगाया है। यहाँ खड़े सभी लोग गवाह हैं। क्या मैंने आप में से किसी को भी ठगा है? मास्टर, आप तो दयालु हैं और आप लोगों को मुफ्त में मदद करते हैं, आप ठग कैसे हो सकते हैं? लगता है तुम और जीना नहीं चाहते लड़के जो ऐसी बात कर रहे हो। मास्टर, गुस्सा मत होइए, आपकी जगह मैं इस लड़के को सबक सिखाता हूँ ताकि फिर कभी ये इस तरह झूठ ना बोले। सिर्फ कुछ शब्द बोलकर ही मास्टर ने सभी लोगों को विपिन के खिलाफ खड़ा कर दिया। तभी उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगे, जैसे विपिन ने उनके खानदान का मर्डर कर दिया हो। तुम्हें कैलकुलेशन करने की काबिलियत 30 साल पहले मिली थी। तुम्हारा मन साफ है। मास्टर की बातें सुनकर विपिन निस्तब्ध था। तुम तो सिर्फ एक कैलकुलेशन करने वाले के स्टूडेंट थे, तो तुम्हें तो एक्सपर्ट जैसा दिखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा बेशरम निकले। इसमें कोई हैरानी नहीं कि पड़ोसी देश से तुम्हें निकाल दिया गया। ना सिर्फ तुम बेशरम हो बल्कि तुम हर हालात में खुद को बचा सकते हो। ऐसे इंसान से तो दूर रहने में ही भलाई है। अगर विपिन के पास लाइब्रेरी ना होती तो शायद वो खुद भी उसकी बातों में आ जाता और अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता। लेकिन क्योंकि उसके पास लाइब्रेरी थी, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि ये मास्टर ठगी ही है। सभी शांत हो जाएं। लोगों को गुस्सा करते देख मास्टर ने हाथ हिलाकर सबको शांत करने की कोशिश की। वो जानता था कि लोग उसके साथ थे, इसलिए आगे बोला, मैं दयालु हूँ, इसलिए अगर तुम अपनी कही बातों के लिए मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और इस बात को यहीं ख़त्म कर दूंगा। नहीं तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम किस सजा के हकदार होंगे। मुझ पर झूठा आरोप लगाकर कोई बच नहीं सकता। सजा? विपिन ने सिर हिलाकर कहा, यह पता करना कहाँ मुश्किल है कि कौन झूठा है। अभी पता लग जाएगा कि तुम ठग हो या नहीं, और मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। सिर्फ चीज़ को साफ करने की ही देर तो है, हमें तुरंत नतीजे मिल जाएंगे। इतनी बकवास करने की क्या ज़रूरत है? साफ करके मास्टर को पता था कि विपिन ऐसा ही कुछ बोलेगा, इसलिए उसने भी जवाब दिया, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आज रात ही राजधानी छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैंने जो भी चीज़ें चुनकर दी थी उन्हें साफ करने में कम से कम एक दिन तो लग ही जाएंगे। मुझे और भी ज़रूरी काम करने हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अब मेरी बात सुनकर तुम ये कहोगे कि मैं सच सामने आने से पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, है ना? अब मास्टर अकड़ कर बोला, मैं मास्टर अमित एक सच्ची ज़िंदगी जीता हूँ। मुझे तुम्हारे झूठे आरोपों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें एक ही सही चीज़ चुनकर दी, लेकिन तुमने मुझ पर ही झूठा आरोप लगा दिया। तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का कोई तरीका नहीं है। क्या तुम्हें एक मास्टर मूल्यांकनकर्ता पर झूठा आरोप लगाने की सज़ा पता है? उसकी बात सुनकर विपिन समझ गया कि उसने इंसान की अकलमंदी को कम आंका था। वो बेशर्म और बहुत ही चालाक था। कोई भी चालाक ठग हालात बिगड़ने के बाद बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर रखता था। उसने भी सबको पहले ही कह रखा था कि वो आज रात शहर छोड़कर चला जाएगा। इससे पहले कि विपिन उस पर कोई वार करता, उसने अपना बचने का रास्ता पहले ही बना लिया। अगर अब विपिन उसे चीजें साफ होने तक रुकने को भी कहेगा तो भी कोई विपिन की बातों का विश्वास नहीं करेगा। और तो और, विपिन के पास कोई सबूत भी नहीं था जो मास्टर को ठग साबित कर दे। लाइब्रेरी का राज सबके सामने आना नहीं चाहिए, और अगर आ भी गया तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। लड़के, जमीन पर झुको और माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को ठग कहने की? मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। ये जंगली इंसान आया कहाँ से जो मास्टर पर कीचड़ उछाल रहा है? मास्टर का ढोंग देखकर लोग उस पर आंखें बंद कर विश्वास कर रहे थे और विपिन को गालियां दिए जा रहे थे। वे लोग गुस्से में वे बहुत ही गुस्से में आ गए थे। जिन्हें ठगा गया था वे भी मास्टर को दोष देने के बजाय अपनी बुरी किस्मत को दोष दे रहे थे। सबको मास्टर ने मोहित कर रखा था और वे सब सपने में खो गए थे। अगर कोई भी उन्हें असलियत बताने की कोशिश करता तो वे उस पर ही गुस्सा होने लगते। उनके मत में तो मास्टर एक सज्जन थे, तो वे किसी को कैसे ठग सकते थे। ये किस तरह का मजाक है, भीड़ में से एक आवाज आई। अगर ये लड़का मास्टर को ठग कह रहा है तो इसे तो कैलकुलेशन करना आता ही होगा। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो तुम खुद ही एक चीज क्यों नहीं चुन लेते। अगर वो चीज बेकार निकली तो तुम ये नाटक करना बंद करोगे और चुपचाप यहाँ से चले जाओगे। बिल्कुल, अगर तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो और मेरी चुनी चीज लेने से मना कर रहे हो तो तुम्हें तो कैलकुलेशन का अच्छा ज्ञान होगा। फिर मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर आगे बोलने लगे, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। हम दोनों एक छोटी सी चीज चुनेंगे और फिर उसे जल्दी से साफ करवाएंगे। अगर तुम्हें उस चीज से फायदा हुआ तो मैं तुम्हारी कैलकुलेशन की काबिलियत को मान लूंगा और ये मुद्दा यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज बेकार निकली तो तुम्हें मेरी चुनी हुई चीज लेनी पड़ेगी और फिर अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। तुम मेरे साथ कैलकुलेशन का मुकाबला करना चाहते हो? एक मिनट पहले ही तो विपिन उसके ढोंग का सबूत ढूंढ रहा था और अब मास्टर की ये बातें सुनकर उसे खुद ही रास्ता मिल गया। उसे तो वही हंसी आ रही थी। इस इंसान के दिमाग में कोई तो स्क्रू ढीला होगा, तभी खुद ही बलि देने का आ गया। विपिन के खुद के पास स्वर की लाइब्रेरी थी। अगर वो खुद को दुनिया का दूसरा सबसे बेहतरीन कैलकुलेशन करने वालों में भी कहेगा तो कोई गलत नहीं होगा। और ये ढोंगी उससे मुकाबला करेगा? इसने अपना सिर दीवार में तो नहीं मार लिया था आज? हालांकि सोचा जाए तो सामने वाले की इन हरकतों का कारण तो समझ में आता था। उसकी नज़र में विपिन कोई 18-19 साल का लड़का ही तो था, तो उसे कैलकुलेशन के बारे में भला क्या पता हो सकता होगा। और क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों का फायदा कराया था, इसलिए उसने खुद के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही रखा होगा। अगर वो दोनों एक ही टाइम अलग अलग चीज़ों का कैलकुलेट करेंगे और विपिन गलत साबित हो जाएगा तो उल्टा मास्टर तो और मशहूर हो जाएगा ना। वो कई और लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ों से लूट सकेगा। विपिन को शांत देखकर मास्टर ने नाक से कोड़ कर कहा, क्यों हिम्मत नहीं हो रही? मास्टर को उकसाता देख विपिन भी कैसे पीछे हट सकता था। ठीक है तो पहले मैं चुनता हूँ। मास्टर ने अपने कपड़े झाड़े और एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म के पास चला गया। उसने एक हाथ के साइज की चीज उठाई। उस पर मिट्टी की एक परत चढ़ी हुई थी। उसका आकार भी सही से पता नहीं लग पा रहा था। कीमत पता करना तो नामुमकिन था। उस चीज को डीलर को देते हुए मास्टर बोले, डीलर इसकी कितनी कीमत है? डीलर ने चीज को देखा और फिर जवाब दिया, इसका साइज छोटा है और इसके अंदर से ज्यादा ऊर्जा भी महसूस नहीं हो रही है। 200 सोने के सिक्के। ठीक है, कोई इसे साफ करने में मेरी मदद करो। मास्टर ने पैसे डीलर को दिए और फिर शांति से कहा, जी। डीलर ने चीज उठाई और उसे वापस हॉल में भिजवा दिया। उस समय बाद ही एक आदमी एक सोने का मेंढक लेकर बाहर आया। उसने मास्टर को देते हुए कहा, मास्टर बधाई हो, ये एक सोने के मेंढक की उतरी हुई खाल है। ये सोने का मेंढक क्या होता है? सोने का मेंढक लेवल 6 का एक जंगली जानवर था। उसके पूरे शरीर में से सबसे कीमती उसकी खाल ही होती थी। वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार खाल बदलता है। इसका इस्तेमाल तो महंगी दवाई में होता है और ये बहुत ही कीमती होती है। मास्टर से सबको यही आशा थी। इतनी सारी चीजों में से ऐसा खजाना तो सिर्फ वही ढूंढ सकते थे। उनका टैलेंट तो कमाल का है। ये सुनकर कि मास्टर ने सोने के मेंढक की खाल चुनी थी, पूरा हॉल शोर से भर गया। मास्टर ने सिर ऊंचा करके कहा, बहुत लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता है, इसलिए तुम साफ साफ इसकी असली कीमत बताओ, सभी को इस चीज की कीमत पता लग जाएगी। डीलर ने उत्साह से कहा, यह चीज 2000 रुपए की है। 2000 रुपए? 200 से खरीदी गई ये चीज एक मिनट में 2000 की बन गई, 10 गुना ज्यादा फायदा, लाजवाब है मास्टर। मास्टर से यही उम्मीद थी। अगर इतनी छोटी सी चीज से इतना फायदा हुआ है तो मास्टर ने तो पहले मुझे इससे कहीं बड़ी चीज चुनकर दी थी, उससे कितना फायदा होगा। ये नज़ारा देखकर भीड़ में और उत्साह आ गया। मास्टर कोई नाटक नहीं कर रहे थे, उनकी हर हरकत से उसके एक्सपर्ट होने का पता चलता था। ठीक है, अब तुम्हारी बारी, मास्टर ने विपिन को घूरते हुए कहा। विपिन ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं? उस धोखेबाज को पहचानने के बाद विपिन को पता था कि उसके पास कोई ना कोई बच निकलने का रास्ता जरूर होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इतना अच्छा और कारगर होगा। अब विपिन को कोई ऐसी चीज चुननी पड़ेगी जो कम से कम उतनी ही कीमती हो। क्या मैं पहले चीज चुनकर उसका दाम उसके साफ होने के बाद दे सकता हूँ? विपिन एक कदम आगे बढ़ा। आगे तो बढ़ा, लेकिन फिर उसने डीलर की ओर देखा और उसे कुछ याद आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें सफाई से पहले ही उसकी कीमत चुकानी होगी, यही नियम है। नहीं तो अगर वो चीज़ बेकार निकली तो तुम उसके पैसे देने से मना कर दोगे, या फिर अगर वो बेहद ही कीमती निकली तो शायद हम ही उसे ना बेचें। ऐसी स्थिति को सुलझाना नामुमकिन हो जाएगा, डीलर ने उसे गुस्से से कहा। ऐसी मुश्किल ना खड़ी हो जाए, इसलिए ही खरीदार को चीज़ के दाम पहले ही देने होते। ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा ही था। एक बार साइन कर दिया तो वापस पीछे नहीं हट सकते। ठीक है फिर। नियम पता चलने के बाद विपिन ने भी सिर हिला दिया, फिर मुड़कर चीजों को देखने लगा। उसे शर्म आ रही थी लेकिन हिम्मत करके उसने कहा, मुझे वो चीजें दिखाओ जो 8 रुपए से कम की हैं, उनमें से एक चीज चुनूंगा।